दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक संस्कृति की विशेषताएं। यद्यपि दक्षिण भारत की शव विसर्जन परंपरा तथा इसके लिए निर्मित समाधियों के आकार प्रकार में पर्याप्त अंतर है, तथापि इसमें कतिपय ऐसी मूलभूत संस्कृतियां विशेष सांस्कृतिक विशेषताएं मिलती हैं जो इस संस्कृति को मौलिक एकता प्रदान करती है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। कृष्ण लोहित मृदभांड। दक्षिण भारत की सभी बृहद पाषाणिक समाधियों और इस संस्कृति से संबद्ध आवास स्थलों पर कृष्ण लोहित मृदभांड मिलते हैं। इस मृदभांड परंपरा के पात्रों का संपूर्ण आंतरिक भाग और गर्दन का भाग काले रंग का तथा शेष बाहरी भाग लाल रंग का होता है। इस प्रकार के मृदभांड सर्वप्रथम दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों के साथ उपलब्ध हुए थे, अतएव प्रारंभ में इन्हें बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित पात्र परंपरा की संज्ञा दी गई थी। कालांतर में इस प्रकार के मृदभांड भारत के अनेक क्षेत्रों में स्थित पुरास्थलों से विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों के साथ मिलने वाले प्रमुख पात्र प्रकारों में छोटे किनारे वाले छिछली थालियां, ऊंची बारी के गहरे कटोरे, घुंडीदार ढक्कन, घड़े, मटके आदि हैं। लौह उपकरण। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियों और आवासक क्षेत्रों से लोहे के बने हुए लगभग 33 प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रमुख लौह उपकरणों में चिपटी, कुल्हाड़ियां, फावड़े, हसिया, छेनी, बसुले, चाकू, मछली पकड़ने की कटिया, बाड़ाग्र, तिपाई, घोड़े की लगाम, नाल, त्रिशूल, तलवारें, कटारे आदि हैं। पृष्ठ संख्या 543। मृतकों का आंशिक समाधिकरण। दक्षिण भारत के अधिकांश समाधियों में वयस्कों की केवल कतिपय चुनी हुई हड्डियों को ही दफनाया गया है। खोपड़ी, हाथ और पैर आदि की बड़ी हड्डियां ही प्रायः दफनाई हुई मिलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद मृतक की लाश को खुला छोड़ दिया जाता था। मांसाहारी पशु पक्षियों द्वारा मांस को खा लेने के पश्चात बची हुई हड्डियों को चुनकर उन्हें समाधि के अंदर रख दिया जाता था। अधिकांश समाधियों में एक से अधिक व्यक्तियों की हड्डियां सामूहिक रूप से दफनाई हुई मिलती हैं। मास्की, आदिचनल्लूर तथा नागार्जुन कोंडा नामक पुरास्थलों के उत्खनन से पूर्ण समाधियों के भी उदाहरण मिले हैं। इस प्रकार की लाशों में दिक स्थापन पूर्व पश्चिम मिलता है। मास्की की एक समाधि में उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया हुआ मानव कंकाल मिला है। छोटे बच्चों को प्रायः संपूर्ण रूप से बड़े बड़े घरों में भरकर दफनाया जाता था। कृषि तथा पशुपालन। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियां प्रायः किसी नदी अथवा झरने की समीपवर्ती क्षेत्र में ही मिलती है, क्योंकि इनसे जल की सदैव पूर्ति होती रही होगी। बृहद पाषाणिक संस्कृति से संबंधित पुरास्थलों के उत्खनन से तत्कालीन लोगों के जीवन की जो झांकी मिलती है उससे यह स्पष्ट है कि ये लोग कृषक तथा पशुपालक थे। धान, जौ, रागी, चना आदि तरह तरह के अनाजों का उत्पादन करते थे। तालाबों से फसलों की सिंचाई की प्रथा से भी संभवतः परिचित थे। पालतू पशुओं में गाय, बैल, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी आदि थे। प्रायः अनेक विद्वानों का अनुमान है कि इनके आर्थिक जीवन में पशुपालन की प्रमुखता थी। कालानुक्रम। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों का कालानुक्रम भारतीय पुरातत्व के जटिल प्रश्नों में से एक है। प्रारंभ में कतिपय पुराविद इनकी तिथि प्रथम शती ईस्वी मानते हैं और कुछ अन्य पुरातत्ववेत्ता बृहद पाषाणिक समाधियों को बहुत प्राचीन मानते थे। दक्षिण भारत की बृहद पाषाणिक समाधियों के कालानुक्रम के निर्धारण के लिए तमिल संगम साहित्य बृहद पाषाणिक उत्खनित पुरास्थलों के स्तरीकरण, मुद्राओं, सिक्कों और रेडियो कार्बन तिथियों का उपयोग किया जा सकता है। संगम साहित्य। तमिल संगम साहित्य में मृतकों के अंतिम संस्कार की दाह संस्कार समाधिकरण, शव मंजूषा समाधि, अंत्येष्टि कलश समाधि और मृतक की लाश को खुला छोड़ देने की इन पांच विधियों का उल्लेख मिलता है। मणि मेकलई और शिलप्पदिकारम में शवाधान की प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। के आर श्रीनिवासन ने संगम साहित्य के इन साक्ष्यों का संकलन किया है। संगम साहित्य का तिथिक्रम विवादपूर्ण है, परंतु आम तौर पर यह माना जाता है कि इसकी रचना पृष्ठ संख्या 544 ख्रिस्तीय संवत की प्रथम शताब्दियों में हुई और इनमें ईसा पूर्व तृतीय से प्रथम शताब्दी की संस्कृति का वर्णन मिलता है। इस आधार पर बृहत्पाषाणिक समाधियों के तिथिक्रम को तृतीय से प्रथम शती ईसा पूर्व के मध्य रखा जा सकता है। स्तरीकरण मार्टिमर व्हीलर द्वारा ब्रह्मगिरी के उत्खनन से बृहत्पाषाणिक समाधियों के तिथिक्रम को स्तरीकरण के साक्ष्य के आधार पर 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य 200 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य रखा गया। ब्रह्मगिरी में नवपाषाणिक संस्कृति के बाद और आंध्र संस्कृति के पूर्व बृहत्पाषाणिक संस्कृति का विकास हुआ था। ब्रह्मगिरी के अतिरिक्त अमरावती के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य का भी उल्लेख किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती नामक पुरास्थल के उत्खनन से ज्ञात स्तूप का समय शैलीगत विशेषताओं के आधार पर लगभग 200 ईसा पूर्व माना जा सकता है। इस स्तूप के नीचे 17 अंत्येष्टि कलश समाधियां मिली थी। यह साक्ष्य इंगित करता है कि 200 ईसा पूर्व के पहले यह संस्कृति अस्तित्व में आ चुकी थी। ब्रह्मगिरी के अतिरिक्त मास्की, नागार्जुन, कोंडा, पय्यमपल्ली, हलिंगली, हल्लूर आदि पुरास्थलों के स्तरीकरण संबंधी साक्ष्यों के आधार पर दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों का समय 300 ईसा पूर्व से पहले रखा जा सकता है। सिक्के सिक्कों के आधार पर भी बृहत पाषाणिक समाधियों की तिथियों का निर्धारण किया जा सकता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सुलूर नामक पुरास्थल में से एरन प्रकार का एक सिक्का मिला है, जिसका समय जॉन एलन नामक सुप्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री ने तृतीय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व बतलाया है। इस साक्ष्य से दक्षिण भारत के कतिपय बृहत पाषाणिक समाधियों का समय तृतीय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है। कोयम्बटूर जिले की पांडुकुली नामक बृहत पाषाणिक समाधि से रोमन शासक अगस्टस 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी का चांदी का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी के प्रारंभिक चरण तक इस संस्कृति का प्रचलन था। रेडियो कार्बन तिथियां दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक संस्कृति से संबंधित कतिपय पुरास्थलों से रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध है। इन पुरास्थलों में हल्लूर, पय्यमपल्ली, बेड़पल्ली, हलिंगली का उल्लेख किया जा सकता है। इन तिथियों के आधार पर 1000 ईसा पूर्व अथवा 700 ईसा पूर्व बृहत पाषाणी समाधियों के प्रारंभ की तिथि मानी जा सकती है। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में दक्षिण भारत के बृहत पाषाणिक समाधियों के व्हीलर द्वारा प्रस्तावित तिथि क्रम में संशोधन करने की आवश्यकता है। इनके आरंभ का तिथि क्रम 1000 अथवा 800 ईसा पूर्व माना जा सकता है। यह असंभव नहीं है यदि इस संस्कृति का प्रचलन प्रथम शती तक चलता रहा हो। निर्माता दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों के निर्माताओं के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विचार किया है। क्रिस्टोफ हेमेंदर्फ पृष्ठ संख्या 545 नामक नृतत्ववेत्ता ने इसके निर्माण का श्रेय द्रविड़ लोगों को दिया है। आदिचनल्लूर के मानव कंकालों का अध्ययन करने के पश्चात एस झुकरमन ने भी ऐसे ही निष्कर्ष निकाले थे। दक्षिण भारत के ब्रह्मगिरी, शाणूर, मास्की, नागार्जुन, कोंडा आदि बृहत पाषाणिक समाधियों से संबद्ध मानव कंकालों के अध्ययन से इन दिशा में अधिक प्रकाश पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत के शिष्ट समाधियों में पूर्व दिशा की शिला पर एक छेद मिलता है। ऐसी व्यवस्था स्पेन, फ्रांस, स्कैंडिनेविया, कॉकेसस क्षेत्र, जॉर्डन और उत्तरी मिस्र की बृहत पाषाणिक समाधियों में भी मिलती है। इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ पुरातत्वविदों ने भारत की महापाषाणिक संस्कृति के उद्भव के प्रश्न को विश्व की बृहत पाषाणिक संस्कृति से अभिन्न स्वीकार किया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इस संस्कृति की प्राचीनता की तिथि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। इस आधार पर यह कहा गया कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति बाहर से आई होगी। ऐसी स्थिति में इसके निर्माण का श्रेय भूमध्य सागरीय मानव समुदाय को दिया जा सकता है। संभव है कि इस संस्कृति के निर्माता समुद्र के मार्ग से दक्षिण भारत गए हो अथवा उत्तर भारत के स्थल मार्ग से दक्षिण भारत पहुंचे हो। उत्तर भारत की बृहत पाषाणिक समाधियां। भारत में बृहत पाषाणिक समाधियों के साथ दक्षिण भारत का नाम प्रायः अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सन 1959 तक पुराविदों की यह धारणा थी कि इस संस्कृति का प्रसार भारत में 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण स्थित क्षेत्रों में अथवा दूसरे शब्दों में गोदावरी घाटी के दक्षिण में था। मार्टिमर व्हीलर ने उपर्युक्त विचार अपनी पुस्तक अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में व्यक्त किए थे। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि इसके बहुत पहले ही कुछ पुराविदों ने जम्मू कश्मीर की लेह तथा झेलम घाटियों, उत्तर प्रदेश के देहरादून के पास देवधुरा, राजस्थान में भरतपुर, जयपुर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान एवं सिंध में कराची के पार स्थित क्षेत्रों में मेगालिथ प्रतिवेदित किए थे। विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर जिले के दक्षिणी अंचल से इस तरह की समाधियों के अस्तित्व की सूचना 19वीं शताब्दी में SCL कार्लाइल ने सर्वप्रथम दी थी। यह बात दूसरी है कि कार्लाइल की संक्षिप्त सूचना के आधार पर उन पुरास्थलों का पुनरन्वेषण दुष्कर कार्य है। उत्खनन के अभाव में इन समाधियों के सांस्कृतिक स्वरूप के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव न था। एक लंबे समय तक उत्तर भारत में महापाषाणिक समाधियों से संबंधित समस्या के विषय में पुरातत्व वेत्ता केवल अटकलें लगाते रहे, लेकिन सन 1962-63 से दक्षिणी उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं बांदा जिलों के क्षेत्रों से पाषाणिक समाधियों के साक्ष्य इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या 546, विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा स्वर्गीय G.R. शर्मा के नेतृत्व में खोज निकाले गए। इस तरह का साक्ष्य चकिया जिले में चंद्रप्रभा नामक नदी की घाटी में हथीनिया पहाड़ी की ढलान पर स्थित क्षेत्र में संगोरा समाधि के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। इन समाधियों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ज्ञात करने के लिए सन 1962-63 में ककोरिया स्थित बृहत पाषाणिक समाधियों और आवासक क्षेत्र का उत्खनन आरंभ किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बृहत पाषाणिक संस्कृति से संबंधित पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी विंध्य क्षेत्र में बृहत पाषाणिक समाधियों के विस्तार को आंकने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा और मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा तथा सतना जिलों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है। जिन नदियों की घाटियों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, गड़ई, जरगो, चुनार के पास छतर की नदी, जोगियादरी, क्याव नाला, सिमरिया नाला, सियोती, बेलन, अदवा, टोंस, ओहन, पयस्वनी, मंदाकिनी आदि उल्लेखनीय हैं। ये नदियां तथा नाले दक्षिण से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए गंगा, टोंस अथवा यमुना नदियों में मिलते हैं। इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि उत्तरी विंध्य क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र की नदियों का की सकरी घाटियों में ये समाधियां मिलती हैं। महत्वपूर्ण पुरास्थलों में चकिया जिले के ककोरिया, हेतिमपुर, कौड़िहार, सोनभद्र जनपद के मघा, मनगढ़ा, पनिहवा, बंजारी, गौरहवा, पोखरा, सोनगढ़ा, इलाहाबाद जिले के कोटियां, डैया, छतरपलिया और चित्रकूट जिले के लालापुर, पहरा आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बहेरा, डाबर, अदियापुर, हर्रई, सर्दमान, हरदी, जोगीबीर, बिरादेई, नकवल तथा सीधी जनपद के झपरहवा की गणना महत्वपूर्ण पुरास्थलों में की जा सकती है। चकिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा जिले में संगोरा समाधियों की अधिकता मिलती है। प्रमुख उत्खनित पुरास्थलों में ककोरिया, कोटिया और मघा का उल्लेख किया जा सकता है। बृहत्पाषाणिक समाधियों के साथ ही साथ आवासक क्षेत्रों का भी उत्खनन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ककोरिया के बृहत्पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लोहे के उपकरण नहीं मिले हैं, इसलिए इन्हें ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित माना गया है। कोटिया की बृहत्पाषाणिक समाधियां लौह युगीन हैं। ककोरिया नामक महापाषाणिक पुरास्थल वाराणसी जिले की चकिया तहसील में स्थित है। हथीनिया पहाड़ी के ढाल पर बृहत्पाषाणिक समाधियों से जिस प्रकार के मृद्भांड प्राप्त हुए, उनके समरूप पात्रखंड इस पुरास्थल पर बिखरे हुए दिखलाई पड़े। समाधिक क्षेत्र के पश्चिम में चंद्रप्रभा नदी के दोनों किनारों पर फैले इस पुरास्थल का सन 1962-63 और 63-64 के मध्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की ओर से उत्खनन कराया गया। पृष्ठ संख्या 547 था, जिसके फलस्वरूप लगभग 1 मीटर मोटे सांस्कृतिक निक्षेप में महापाषाणिक समाधि की एकाकी संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। 12 समाधियों को उत्खनन के लिए चुना गया, जिनमें से 8 संगोरा समाधियां, 3 शिष्ट समाधियां और 1 संगोरा समाधि के अंदर स्थित शिष्ट समाधि थी। इस प्रकार इस पुरास्थल के प्रमुख समाधि प्रकारों में संगोरा और शिष्ट समाधियां प्रमुख हैं। संगोरा समाधियां। संगोरा समाधि के निर्माण के लिए जमीन में लगभग 1.27 मीटर गहरा आयताकार गड्ढा खोदा जाता था। ककोरिया की संगोरा समाधियों से पूर्ण मानव कंकाल प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि इन कब्रों में मनुष्य की कतिपय जीर्ण शीर्ण अस्थियां मात्र प्राप्त हुई हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें आंशिक समाधान माना। चित्र 11, ककोरिया संगोरा समाधि, सौजन्य प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, माना जा सकता है। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में कृष्ण लोहित मृद्भांड, लघु पाषाण उपकरण, मवेशियों की हड्डियां, एक कब्र में सोने की बनी एक अंगूठी आदि रखने के बाद कब्र को गड्ढा खोदते समय निकाली हुई मिट्टी से भर दिया जाता था। अंत्येष्टि सामग्री रखने का कोई निश्चित क्रम नहीं था। कभी गड्ढे के एक किनारे पर अथवा मध्य भाग में और समाधि संख्या 8 में नीचे से ऊपर तक विभिन्न गहराइयों पर मिट्टी के पात्र रखे हुए मिले हैं। समाधि को भर देने के बाद उसके ऊपर और अगल बगल पत्थर के टुकड़ों का ढेर लगा दिया जाता था। बेलन की सहायक अथवा सहायक अदवा की घाटी में संगोरा समाधियां 40 सेमी से 1.35 मीटर ऊंची मिलती है। इनका व्यास 4.25 मीटर से 5.45 मीटर तक मिलता है। शिष्ट समाधियां। विंध्य क्षेत्र में शिष्ट समाधियों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत से भिन्न एक नवीन विधि का उपयोग किया गया है। शिष्ट की चारों दीवालों का निर्माण 4 शिलाओं से न करके पत्थर के छोटे छोटे अनेक टुकड़ों से किया गया है। शिष्ट का थोड़ा सा हिस्सा जमीन के ऊपर झांकता हुआ दिखलाई पड़ता है। पृष्ठ संख्या 548। ककोरिया के शिष्ट समाधियों को ढकने के लिए शीर्ष शिला के प्रयोग के निर्माण प्रयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। चित्रकूट जिले में ओहन और झूरी नदियों की घाटियों से भी इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। अदवा की घाटी से जो शिष्ट समाधियां मिली हैं, उनकी लंबाई 1.05 मीटर से 2.25 मीटर और चौड़ाई 50 सेमी से 1.45 मीटर मिलती है। अदवा के शिष्ट समाधियों की शीर्ष शिलाएं अपने मूल स्थान से थोड़ा हटाई हुई मिली हैं। विंध्य क्षेत्र की शिष्ट समाधियों की शिलाओं में छिद्र अथवा गवाक्ष नहीं मिलता है। कतिपय उदाहरणों में संगोरा समाधि के अंदर शिष्ट समाधि के साक्ष्य मिले हैं। मेनहीर। विंध्य क्षेत्र बृहत्पाषाणिक समाधियों का तीसरा प्रमुख प्रकार मेनहीर है। इस प्रकार की समाधियां मुख्य रूप से चित्रकूट जिले में मंदाकिनी पयस्विनी की घाटी में मिली है। इनका अभी तक उत्खनन नहीं हुआ है, इसलिए इनके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोटिया की लौह युगीन बृहत्पाषाणिक समाधियां। ककोरिया की समाधियों तथा आवास स्थल के उत्खनन से लौह उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इस पुरास्थल की समाधियों को ताम्रपाषाणिक काल की बृहत्पाषाणिक समाधियां कहा गया है। बेलन नदी की घाटी में स्थित कोटिया नामक पुरास्थल की बृहत्पाषाणिक समाधियों के उत्खनन से लौह उपकरण मिले हैं। यहाँ से कृष्ण लोहित परंपरा के जो मृदभांड मिले हैं वे कोकरिया के मृदभांडों से आकार प्रकार एवं बनावट की दृष्टि से भिन्न हैं। कोटिया के मृदभांड अपेक्षाकृत मोटी गढ़न के हैं। कोटिया में भी संगोरा तथा शिष्ट समाधियां मिलती हैं। यहाँ की कब्रों से मानव अस्थियां नहीं मिली हैं, बल्कि गाय बैल आदि मवेशियों की हड्डियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऐसी स्थिति में यह संभावना प्रकट की जा सकती है कि यह स्मारक अथवा संस्मरणात्मक समाधियां थी। कालानुक्रम उत्तरी विंध्य क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति के लोग कब आए और यह संस्कृति कब तक जीवित रही, इन प्रश्नों का सुनिश्चित उत्तर फिलहाल नहीं दिया जा सकता है। बेलन, अदवा, सियोती, टोंस, लपरी, मंदाकिनी, पयस्विनी, ओहन आदि नदियों की घाटियों में जो अन्वेषण कार्य हुआ है उनके आधार पर यह महापाषाणिक पुरास्थलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक, पहली श्रेणी में उन पुरास्थलों को रख सकते हैं जहाँ से ककोरिया के समरूप मृदभांड मिले हैं। ऐसे पुरास्थलों में कोलडिहवा को रख सकते हैं। 2, दूसरे वर्ग में उन पुरास्थलों को रखा जा सकता है जहाँ पर ककोरिया के मृदभांड परंपरा के साथ ही साथ कोटिया से मिलती जुलती पात्र परंपरा मिलती है, जैसे बेलन के दाएं तट पर स्थित खजूरी का टीला और पृष्ठ संख्या 549। 3, तीसरी श्रेणी में कोटिया आदि ऐसे पुरास्थल आते हैं जहाँ पर केवल कोटिया प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जैसे चित्रकूट जिले में ओहन के तट पर स्थित लालापुर आदि। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति काफी लंबे समय तक जीवित रही। ककोरिया के आवासक क्षेत्र से जो 4 खंतियां डाली में जो 4 खंतियां डाली गई थी उनके निक्षेप की औसत मोटाई लगभग 1 मीटर मिली है। कब्रों तथा आवासक क्षेत्र से एक ही तरह के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कृष्ण लोहित, कृष्ण लेपित एवं लाल रंग के मृदभांड मुख्य रूप से मिले हैं। इन पात्रों पर चित्रण के साक्ष्य नहीं उपलब्ध हुए हैं। पात्रों के अतिरिक्त लघु पाषाण उपकरण, ताबे के पुरावशेष, माणिक्य के मनके आदि मिले हैं। ककोरिया के कतिपय पात्र प्रकार मध्य भारत के ताम्र पाषाणिक संस्कृति के पात्र प्रकारों से मिलते जुलते हैं। ककोरिया और कोलडिहवा की पात्र परंपरा के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ककोरिया की मृदभांड परंपरा प्राचीनतर है। इस आधार पर इसके प्रचलन का समय लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जा सकता है। उत्तरी काले ओबदार मृदभांड के ठीकरे न तो ककोरिया की कब्रों से मिले हैं और न आवासक क्षेत्र से ही, जबकि विंध्य क्षेत्र के कई पुरास्थलों से NBP पात्र परंपरा के ठीकरे मिले हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब NBP परंपरा के लोग चंद्रप्रभा की घाटी में पहुंचे उस समय तक महापाषाणिक संस्कृति तिरोहित हो चुकी थी। यदि यह मान लिया जाए कि मध्य गंगा घाटी में NBP पात्र परंपरा का प्रचलन 6 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ तो हमें यह मानना पड़ेगा कि वाराणसी की चकिया तहसील में विकसित होने वाली बृहत पाषाणिक संस्कृति 6 शताब्दी ईसा पूर्व के पहले ही समाप्त हो चुकी थी। विंध्य क्षेत्र में विकसित होने वाली सभी बृहत पाषाणिक समाधियां ताम्र पाषाणिक नहीं हैं। कोटिया में किए गए उत्खननों से जो महापाषाणिक समाधियां ज्ञात हुई हैं वे लौह युगीन हैं। कोटिया से जो विशिष्ट प्रकार की पात्र परंपराएं मिली हैं वे लाल, भूरे तथा कृष्ण लोहित प्रकार की हैं। ये समस्त पात्र परंपराएं मोटे गढ़न की हैं। इनके पात्र प्रकार भी ककोरिया के मृदभांडों के पात्रों से भिन्न हैं। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, मनके तथा लोहे के उपकरण भी पर्याप्त संख्या में मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कोटिया की महापाषाणिक संस्कृति की प्राचीनतम सीमा रेखा 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक खींची गई है। रेडियो कार्बन तिथियों के अनुसार इसका समय 3 शताब्दी ईसा पूर्व से 1 शताब्दी ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है। विंध्य क्षेत्र के एक विस्तृत भूभाग में महापाषाणिक समाधियों का मिलना भारतीय पुरातत्व की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि महापाषाणिक संस्कृति का संबंध केवल दक्षिण भारत के पुरातत्व से ही है। पृष्ठ संख्या 550। विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में बृहत पाषाणी समाधियों के प्रकाश में आने से कई नए प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। विंध्य क्षेत्र की महापाषाणी समाधियों का मूल स्रोत क्या रहा होगा? इनके निर्माता कब और किधर से विंध्य क्षेत्र में आए? दक्षिण भारत और विंध्य क्षेत्र की बृहत पाषाणिक संस्कृतियों के बीच पारस्परिक क्या संबंध थे? इन और इन्हीं के तरह के अन्य प्रश्नों का समाधान सहज रूप से संभव नहीं है। इस संबंध में फिलहाल केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। इन समस्याओं के निराकरण के लिए पर्याप्त छानबीन की नितांत आवश्यकता है। विदर्भ क्षेत्र के बृहत पाषाणिक समाधियां। महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्वी विदर्भ बरार क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से अन्वेषण कार्य किए गए, जिनके फलस्वरूप धूले खान देश अमरावती वर्धा तथा नागपुर जिलों से कृष्ण लोहित मृदभांड के ठीकरे और लोहे के उपकरण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सन 1959-60 में महूरझरी, सन 1960-61 में कौंडिन्यपुर अमरावती, चित्रबारक खापा नागपुर बृहत पाषाणिक समाधि से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं सौजन्य दक्कन कॉलेज पुणे। पृष्ठ संख्या 551, चित्र 13, महूरझरी स्वर्ण मुकुट सौजन्य दक्कन कॉलेज पुणे। और सन 1961-62 में जूना पड़ी नामक पुरास्थल का अन्वेषण किया था। नागपुर जिले में स्थित ताकल घाट, खापा, महूझरी, नैकुंड और वर्धा जिले में स्थित पौनार, खैरवाड़ा नामक पुरास्थलों का नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से SB देव ने उत्खनन कराया। बृहत पाषाणी समाधियों और उनसे संबंधित आवास स्थलों का उत्खनन किया गया है। बृहत पाषाणिक समाधियों में सबसे अधिक संख्या संगोरा समाधियों की है। दूसरे प्रकार की कब्रों में डोलमेन सिस्ट का उल्लेख किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 552, बृहत पाषाणिक समाधियों से मानव की अस्थियों के साथ साथ पशुओं, विशेषकर घोड़ों की हड्डियां मिली हैं। महूरझरी, खापा तथा नैकुंड नामक पुरास्थलों के उत्खनन से घोड़े के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे तथा लोहे के उपकरण माणिक्य के मन के अन्य प्रमुख पुरावशेष हैं। लोहे के उपकरणों में ताकल घाट के प्राप्त नमूनों का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें बाण एवं भाले के फलक, चाकू, छेनी, कुल्हाड़ी, कीले, मछली पकड़ने की कटिया, चूड़ी, कड़ाही, कड़छुल, कटार, तलवार और घोड़े की लगाम आदि हैं। आवासक क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री बृहत पाषाणिक समाधियों से प्राप्त पुरावशेषों के लगभग समरूप हैं। ताकल घाट तथा खापा के आवासक क्षेत्रों से प्राप्त पुरावशेषों में भी समता दृष्टिगोचर होती है। SB देव ने आवास स्थलों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री अ ब स तीन उपकालों में विभाजित किया है। विदर्भ और दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक संस्कृति के मृदभांडों, लौह उपकरणों, मनकों आदि में समरूपता मिलती है। विदर्भ क्षेत्र की बृहत पाषाणिक संस्कृति के कालानुक्रम के लिए ताकल घाट से दो रेडियो कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं। ये तिथियां हैं TF 683-615 ±105 ईसा पूर्व और TF 784-555 ±100 ईसा पूर्व। इन रेडियो कार्बन तिथियों के आलोक में विदर्भ की बृहत पाषाणिक संस्कृति के प्रारंभ का समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में बृहत पाषाणिक समाधियों का अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में प्रसार था। महापाषाणिक समाधियां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी हुई है। कालानुक्रम की दृष्टि से इन्हें दो सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक आद्य ऐतिहासिक काल के बृहत पाषाणिक समाधियां और दो आधुनिक काल के बृहत पाषाणिक समाधियां। आद्य ऐतिहासिक काल की महापाषाणिक समाधियों का संक्षिप्त विवरण ऊपर दिया जा चुका है। असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों में बृहत्पाषाणी समाधियों के निर्माण की परंपरा एक जीवंत प्रथा के रूप में मिलती है। इस वर्ग की समाधियों को पुरातत्व की परिधि से बाहर रखा जा सकता है। अन्य सभी समाधियों को पुरातत्व की परिधि से बाहर रखा जा सकता है। अन्य सभी समाधियों और उनसे जुड़ी संस्कृतियों का अध्ययन पुरातत्व की दृष्टि से किया जा सकता है। बृहत पाषाणिक समाधियों तथा आवास स्थलों के कालानुक्रम के संबंध में साक्ष्यों के अपर्याप्त होने के कारण इनका समुचित ढंग से अनुशीलन करने में कठिनाई होती है।